एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम गोता लगा रहे हैं इतिहास के एक बेहद मशहूर लेकिन उतने ही कह सकते हैं विवादित अध्याय में।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कैप्टन जेम्स कुक की, और खास तौर पर उनकी अंतिम वो जो दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा थी।
हाँ,
जैसा कि हैम्पटन साइड्स ने अपनी किताब द वाइड वाइड सी में बताया है, मतलब कुक का नाम सुनते ही लगता है महान समुद्री खोजें, पर उनकी मौत,
हाँ, कैसे हुई, क्यों हुई, ये सवाल आज भी हैं।
और यही इस किताब को खास बनाता है ना?
हाँ, ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देती,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये उन जटिल वजहों की पड़ताल करती है कि आखिर क्यों इतिहास के इतने महान नाविक का अंत हवाई के तट पर इतना हिंसक हुआ।
और ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। साम्राज्यवाद, संस्कृतियों का टकराव, एक व्यक्ति की सीमाएं, ये सब आज भी प्रासंगिक है।
बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले लेखक हैम्पटन साइड्स, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या खास है उनके लिखने के अंदाज में?
हैम्पटन साइड्स वो जाने माने अमरीकी इतिहासकार और लेखक हैं,
हाँ,
और उनकी खासियत है गहरी रिसर्च। लेकिन वो सिर्फ तथ्य नहीं रखते, वो कहानी कहते हैं, किरदारों के अंदर उतरते हैं, उनके जज्बात, उनकी कश्मकश।
हाँ, वो मानवीय पहलू उभारते हैं। मैंने उनकी गोस्ट सोल्जर्स पढ़ी है, उसमें भी यही बात थी।
बिल्कुल, और कुक की कहानी के लिए ये नजरिया बहुत जरूरी है। साइड्स कुक को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं देखते,
नहीं,
वो उन्हें एक इंसान की तरह दिखाते हैं जो तीसरी यात्रा तक बहुत थक चुका था, शायद बीमार भी था, और उस पर दबाव ब्रिटिश साम्राज्य की उम्मीदों का वो बहुत भारी था।
तो वो कुक के अंदर का जो द्वंद है, जो गुस्सा बढ़ रहा था, उसको पकड़ते हैं।
हाँ, बारीकी से। और साथ ही जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है,
हाँ
वो स्वदेशी आवाजें।
हाँ ये महत्वपूर्ण है, प्रशांत द्वीपवासियों का नजरिया।
बिल्कुल, ये सिर्फ कुक की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जिनसे वो मिले, तो एक संतुलन है किताब में।
अच्छा, तो किताब का जो मूल विचार है वो क्या है, क्या कहना चाहती है ये किताब?
देखिए, ये किताब कुक की तीसरी और अंतिम प्रशांत यात्रा, मतलब 1776 से 79 या 80 तक, उसका एक गहरा विश्लेषण है। ये सिर्फ एडवेंचर कहानी नहीं है, ये एक त्रासदी की परतें खोलती हैं। साइट्स का मेन पॉइंट ये है कि हवाई में कुक की जो मौत हुई,
हाँ,
वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, या जैसा उस वक्त कहा गया कि वो असभ्य जंगलीपन था, ऐसा नहीं था।
तो फिर क्या था, क्या वजहें थी?
साइट्स कई धागे एक साथ लाते हैं।
जी,
पहला, खुद कैप्टन कुक का पतन, शारीरिक और मानसिक।
मतलब
वो थक चुके थे बहुत ज्यादा, शायद कोई बीमारी भी थी, और उनका जो मशहूर धैर्य था वो अब गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल रहा था।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा था ब्रिटिश साम्राज्य का दबाव, जबरदस्त दबाव, खासकर वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज खोजने का गुप्त मिशन।
हाँ, वो उत्तरी अमेरिका के ऊपर से रास्ता खोजने वाला, वो तो लगभग असंभव जैसा था।
बिल्कुल, और तीसरा, शायद सबसे अहम,
सांस्कृतिक टकराव।
हाँ, यूरोपीय और प्रशांत द्वीपवासी, उनकी संस्कृतियां, उनकी मान्यताएं, दुनिया देखने का नजरिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। ये सिर्फ भाषा का अंतर नहीं था, ये मूल्यों का टकराव था, और उससे भयंकर गलतफहमियां पैदा हुईं।
तो किताब दिखाती है कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ आए और हवाई के किला के कुआ बे में वो दुखद अंत हुआ।
हाँ, ये कुक के वीर मिथक को तोड़ती है, एक ज्यादा जटिल मानवीय तस्वीर सामने रखती है।
चलिए अब इस यात्रा के सफर पर चलते हैं जैसा साइड्स ने दिखाया है। शुरुआत होती है एक ऐसे नायक से जो शायद वापस जाना ही नहीं चाहता था।
हाँ, कुक उस समय ब्रिटेन में तो सेलिब्रिटी थे, एनलाइटनमेंट का चेहरा माने जाते थे।
प्रबुद्धता का दौर।
हाँ, लेकिन वो असल में थक चुके थे, रिटायर होना चाहते थे, पर एडमिरल्टी ने उन्हें एक और आखिरी महान यात्रा के लिए मना लिया।
और इस यात्रा के दो चेहरे थे, है ना?
एक जो सबको पता था,
वो था ताहिती के ओमाई को उसके घर वापस छोड़ना,
और दूसरा, गुप्त लक्ष्य।
वो असल मकसद था, नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज। ब्रिटेन के लिए ये व्यापार और ताकत बढ़ाने का रास्ता हो सकता था।
तो ये दबाव कुक पर शुरू से था, उन्हें पता था ये कितना मुश्किल है।
हाँ, साइट्स इशारा करते हैं कि शायद कुक यात्रा शुरू होने से पहले ही अपनी क्षमता की सीमा महसूस कर रहे थे।
फिर यात्रा दक्षिण प्रशांत पहुंचती है, और ओमाई की कहानी वो सांस्कृतिक टकराव का एक बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल, लंदन में तो उसे एक अजूबे की तरह देखा गया, पर जब वो घर लौटा तो वो कहीं का नहीं रहा।
उसके वो यूरोपीय तोहफे, तौर तरीके, उसके लोगों के लिए बेकार थे।
हाँ, और इसी दौरान कुक के व्यवहार में बदलाव दिखने लगता है, साफ तौर पर
उनका धैर्य कम होने लगता है।
बहुत छोटी छोटी चोरियों पर जिन्हें वो पहले शायद नजरअंदाज कर देते,
अब उन पर वो द्वीपवासियों को बेरहमी से सजा देने लगते हैं। कोड़े मारना, कान काट देना, झोपड़ियां जला देना।
इससे तो उनके अपने क्रू में भी बेचैनी फैली होगी।
बिल्कुल, वो संयमित समझदार कमांडर अब गुस्से और हताशा में दिख रहा था।
फिर जहाज उत्तर की ओर जाते हैं, अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे आर्कटिक की ओर, नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तलाश में।
और ये सफर बहुत कठिन था। भयानक मौसम, घना कोहरा, अनजान तट,
और नतीजा
पूरी तरह विफलता। उन्हें आर्कटिक में बर्फ की एक ऐसी दीवार मिली जिसे पार करना नामुमकिन था।
ये सिर्फ एक रणनीतिक हार नहीं थी, है ना?
नहीं, ये कुक के लिए गहरा व्यक्तिगत झटका था। उनकी जो अजय वाली छवि थी वो यहीं टूटती है।
साइट्स से उनके मानसिक पतन का एक अहम मोड़ मानते हैं।
हाँ, और शारीरिक थकान, शायद पेट का कोई इन्फेक्शन, उसने हालत और बिगाड़ दी।
इसी हताशा में वो दक्षिण मुड़ते हैं और हवाई पहुंचते हैं, जिसे उन्होंने सैंडविच आइलैंड्स नाम दिया था।
बिल्कुल, आर्कटिक की उस ठंडी बेरंग निराशा के बाद हवाई किसी स्वर्ग जैसा लगा होगा। हरे भरे द्वीप, खाना भरपूर,
और हजारों हवाई वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया,
अभूतपूर्व स्वागत। और यही वो मशहूर लोनो वाली बात आती है।
हाँ, क्या उन्हें वाकई देवता समझ लिया गया था लोनो, जो उसी मकाही की उत्सव के समय लौटा था?
देखिए, साइट्स कहते हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल है, पक्के तौर पर नहीं कह सकते।
अच्छा,
हो सकता है उन्हें देवता समझा गया हो, या शायद वो सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली अजनबी का अपनी परंपरा के हिसाब से सम्मान कर रहे थे।
लेकिन स्थिति बहुत नाजुक थी।
हाँ, क्योंकि ये रिश्ता एक गहरी गलतफहमी पर टिका था।
हाँ।
अंग्रेजों को एक खास हैसियत मिल गई, एक तरह की माना, मतलब आध्यात्मिक शक्ति,
जो असल में उनकी थी नहीं।
बिल्कुल, ये एक खतरनाक बुलबुला था।
और ये बुलबुला फूटा कब?
जल्द ही, कुछ हफ्ते बाद, जब कुक के जहाज वहां से निकले तो एक तूफान आया, और मुख्य जहाज रेजोल्यूशन, उसका मस्तूल टूट गया, तो उन्हें मरम्मत के लिए मजबूरन उसी केलाकुआ खाड़ी में लौटना पड़ा।
और इस बार माहौल बिल्कुल अलग था,
एकदम अलग। समय बदल चुका था, वो जो लोनो का पवित्र समय था, महाहिकी उत्सव, वो खत्म हो चुका था।
तो अब उनकी वापसी एक देवता का लौटना नहीं मानी गई?
नहीं, अब वो एक बोझ थे, एक घुसपैठ। हवाई वासियों का रवैया बदल गया, शक दुश्मनी बढ़ने लगी, चोरियां ज्यादा खुलेआम होने लगी।
ऐसा लगा जैसे अंग्रेजों की वो खास हैसियत, वो माना, वो खत्म हो गई थी।
हाँ बिल्कुल, तनाव बढ़ता गया और कुक खुद भी बीमार थे, चिड़चिड़े थे, अपमानित महसूस कर रहे थे।
और फिर वो हुआ जिसने सब बदल दिया। आखिरी टकराव कैसे शुरू हुआ?
चिंगारी बनी दूसरे जहाज डिस्कवरी की एक छोटी नाव, कटर, उसकी चोरी। कुक के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने वही पुराना तरीका आजमाने का फैसला किया।
कौन सा?
हवाई के बुजुर्ग राजा कलानी ओपूस को बंधक बनाना, ताकि नाव वापस मिल जाए। ये वो पहले भी कर चुके थे,
लेकिन इस माहौल में ये तो बहुत जोखिम भरा था।
शायद ये उनकी हताशा थी या बिगड़ती निर्णय क्षमता। साइड्स उस आखिरी सुबह का बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला ब्यौरा देते हैं।
क्या हुआ था?
कुक कुछ सैनिकों के साथ तट पर उतरे। राजा पहले तो बातचीत के लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी भीड़ जमा हो गई, हजारों उत्तेजित योद्धा।
ओहो।
उसी वक्त खाड़ी में कहीं और अंग्रेजों के हाथों एक हवाई प्रमुख के मारे जाने की खबर फैल गई।
स्थिति और बिगड़ गई।
हाँ, राजा की पत्नी और सरदारों ने उसे जाने से रोक दिया, और फिर भगदड़ मच गई। अराजकता।
और उसी भगदड़ में कुक?
हाँ, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, पीछे से वार हुआ, फिर भालों और चाकुओं से। साई जिसे कोई वीरता वाली लड़ाई नहीं मानते,
नहीं,
वो इसे डर, गुस्सा और गलतफहमी से पैदा हुई एक हताश अराजक झड़प मानते हैं, एक त्रासदी जिसका कोई एक विलेन नहीं था।
कुक की मौत के बाद उनके दल ने बदला लिया, फिर बातचीत हुई, उनके अवशेष वापस मिले, कैप्टन क्लर्क ने कमान संभाली।
हाँ, जो खुद टीवी से मर रहे थे, और जहाज वापस इंग्लैंड ले गए।
लेकिन कुक की विरासत पर ये किताब क्या कहती है, क्या निष्कर्ष निकालती है?
किताब कुक को एक बहुत जटिल शख्सियत के तौर पर देखती है, न सिर्फ नायक, न सिर्फ खलनायक। वो अपने समय की उपज थे, मतलब प्रबुद्धता के आदर्शों से भी जुड़े थे, लेकिन साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं के वाहक भी थे।
हाँ, दोनों बातें थी।
और उनकी मौत, वो प्रथम संपर्क की जो त्रासदी होती है, उसमें जो हिंसा छिपी होती है, उसका प्रतीक बन गई।
और ये जरूरी है कि हम कहानी को सिर्फ यूरोपीय नजरिए से ना देखें।
बिल्कुल, उन स्वदेशी लोगों के नजरिए से भी समझें जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी।
इस पूरी कहानी से कई गहरे विषय उभरते हैं ना, जैसे एक तो लीडरशिप पर पड़ने वाला बोझ।
हाँ, मनोवैज्ञानिक बोझ। कुक की कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे मजबूत लीडर भी लगातार दबाव में सेहत को नजरअंदाज करके खुद अपने मिशन के लिए खतरा बन सकता है।
ये आज के लीडर्स के लिए भी एक चेतावनी है।
बिल्कुल। दूसरा अहम सबक है संस्कृतियों के टकराव का। कैसे अज्ञान, अहंकार और संवाद की कमी कितनी विनाशकारी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि आज की दुनिया में भी अलग संस्कृतियों को समझने के लिए विनम्रता चाहिए, खुलापन चाहिए।
हम अक्सर सोचते हैं हमारी सोच ही सही है, पर यह कहानी दिखाती है कि अर्थ के अलग ब्रह्मांड एक ही जगह हो सकते हैं।
सही कहा। और एक और बात कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता। स्वदेशी लोगों की अपनी राजनीति थी, अपनी सोच थी। वो सिर्फ शिकार नहीं थे। कलानियोपू और उनके लोगों ने अपने हितों के हिसाब से फैसले लिए।
तो इतिहास को पूरी तरह समझने के लिए इन आवाजों को सुनना जरूरी है।
बिल्कुल। और यह हमें व्हील पूजा से हटाता है। ऐतिहासिक शख्सियतों को उनकी पूरी जटिलता में उनकी कमियों के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, कुक महान थे पर उनमें कमियां भी थी।
और ये भी याद दिलाता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है। ये भी अपने आप में एक ताकत का खेल है। खोज किसने की, ये नजरिया बहुत मायने रखता है।
किताब में कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे ये कहना कि तीसरी यात्रा पर निकला कुक अपने पिछले स्वरूप का भूत मात्र था, प्रबुद्ध संयम की जगह एक उबलते गुस्से ने ले ली थी।
हाँ, ये दिखाता है कि पतन कितना धीरे धीरे होता है, अंदर तक।
या फिर वो विचार के ब्रिटिश और हवाईवासी एक ही तट पर खड़े थे, लेकिन वे अर्थ के पूरी तरह से अलग ब्रह्मांडों में रहते थे। संघर्ष शायद अनिवार्य था।
वो जो गहरी खाई थी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन था, ये सिर्फ भाषा का नहीं, दुनिया को देखने के नजरिए का फर्क था।
और साम्राज्यवाद के असर पर वो टिप्पणी कि कुक यात्राएं उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती हैं जब प्रशांत एक पोलिनेशियन महासागर से यूरोपीय झील में बदलना शुरू हुआ।
वो शक्ति संतुलन का बदलना जिसका असर आज तक है।
तो इस ऐतिहासिक कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ अतीत का किस्सा है?
मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। पहली बात तो वही लीडरशिप और बर्नआउट वाली। अपनी सीमाएं पहचानना, मदद मांगना, यह आज भी उतना ही जरूरी है। दूसरी बात, अंतर सांस्कृतिक समझ। आज की ग्लोबलाइज दुनिया में हम रोज अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं।
सही है।
कुक की कहानी हमें विनम्रता सिखाती है, दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सिखाती है।
तीसरा, इतिहास को आलोचनात्मक नजरिए से देखना। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करना, गहराई में जाना, अलग अलग पक्ष सुनना।
हाँ, मिथकों पर सवाल उठाना।
और चौथा, अनपेक्षित परिणाम, है ना? कुक की यात्राओं ने अनजाने में बीमारियां फैलाईं, समाजों को अस्त व्यस्त किया।
बिल्कुल। ये हमें आज के टेक्नोलॉजी या विकास परियोजनाओं के दूरगामी प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम हमेशा सारे नतीजों पर विचार करते हैं?
क्या हम उन लोगों की आवाज सुनते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? ये बड़ा सवाल है।
सही कहा। तो अंत में इस गहरी चर्चा से आपके लिए सबसे यादगार क्या रहा?
और मेरे लिए शायद कुक का मानवीकरण, एक महान प्रतीक को, एक लेजेंड को दबाव में टूटते देखना, गलतियां करते देखना, और हवाई के वो आखिरी दिन, वो तनाव का बढ़ना, वो अनहोनी की आहट, साइड्स ने उसे कमाल का लिखा है। लगता है जैसे हम वहीं मौजूद हों।
और मेरे लिए सबसे अहम है नजरिए की ताकत। कैसे एक ही घटना हवाई दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दिखती है। ये याद दिलाता है कि कहानी कौन कह रहा है, ये हमेशा मायने रखता है। ये किताब सिर्फ कुक की कहानी नहीं, ये हमें इतिहास को और शायद खुद को भी ज्यादा गहराई से समझने का मौका देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।